मान ने करिश्मा जी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार तारा परी के लिए कर दिया था। इससे करिश्मा जी काफ़ी परेशान हो गई थीं और बेहोश हो गई थीं। तारा परी अमन से बात करने के लिए उसके कमरे में गई थी, लेकिन अचानक उन दोनों में एक किस हो गई। मान ने ये देख लिया। वो जलकर अमन को तारा परी से एक झटके से हटा दिया। अमन को मान पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने तारा को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तारा परी रोने का नाटक करती हुई वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। तारा परी के जाने के बाद अमन मान को घूर कर देखने लगा। अमन, बोला मान, ये क्या बदतमीजी थी? क्या तुझे ये नहीं पता किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करके जाना चाहिए? भाई, गुस्से से बोला मान, आपने तारा को किस क्यों किया? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अमन उसे घूर कर देखने लगा। और भाई, मान ने फिर कहा, आप तो जानते हैं मैं जो भी कहता हूँ साफ साफ कहता हूँ। यही एक रीज़न है पहले भी हम दोनों के इसी साफ बात बोलने के चक्कर में झगड़ा हो गया था। लेकिन भाई, मान ने आगे कहा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तारा से। आप प्लीज़ उससे दूर हो जाइए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं आपको उसके आसपास भी देखूँ। मान ने अपनी मुँह फट जुबान से एकदम से इतनी बड़ी बात बोल दी थी। इसे सुनकर अमन का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से से मान का कॉलर पकड़ लिया था और उसे एक घूसा जड़ने ही वाला था कि तभी नीचे से किसी नौकर के चिल्लाने की आवाज़ आई, साहब, साहब। अमन और मान एक दूसरे को देखने लगे और किसी अनहोनी के डर से तुरंत नीचे की ओर भागे। उन्होंने भागकर करिश्मा जी के कमरे में देखा तो वे अपनी माँ को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हैरान रह गए। वे जल्दी से उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। वे दोनों भाई अपनी माँ पर जान छिड़क रहे थे। अपनी माँ की ये हालत देखकर वे दोनों परेशान हो चुके थे। वे उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उनके पास अब एक ही रास्ता था, जिन महाराज। एक जिन महाराज ही थे जो उनकी सारी दुविधा दूर कर सकते थे। दोनों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और बगीचे की ओर चल पड़े। तारा परी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि वे लोग कहाँ जा रहे थे। अब उसे अपना सिर थोड़ा थोड़ा हल्का महसूस होने लगा था। उसे पता था जिन महाराज आज उसकी आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म कर देंगे। अमन और मान जल्दी ही बगीचे में पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा माली काका वहां खड़े हुए पहरा दे रहे थे। वे लोग माली काका के सामने करिश्मा जी को अंदर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि माली काका एक इंसान थे और इंसानों के सामने वे लोग खुद को जाहिर नहीं कर सकते थे। इसलिए अमन ने माली काका के पास जाकर मान को अपनी माँ के पास बिठा दिया। माली काका मान को देखते ही बेहद खुश हो गए और बोले, अमन बेटा, आप यहाँ कैसे हैं आप? अमन अपनी इमोशन छुपाता हुआ झूठी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर बोला, मैं ठीक हूँ काका। वो काका, आप एक काम कीजिए, आप आज की छुट्टी कर लीजिए, क्योंकि मेरा दिल है आज पूरा समय अकेले बगीचे में व्यतीत करने का। अमन की बात सुनकर माली काका चौंक गया। वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो बोला नहीं, क्योंकि उस बगीचे का मालिक अमन था और वो उसका मुलाजिम था। माली काका अमन की बात नहीं टाल सकता था, सो वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अमन ने मान को इशारा कर दिया और वे दोनों भाई करिश्मा जी को लेकर सीधा बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अपना माथा पकड़े हुए तेजी से अपने गुरु की समाधि की ओर भाग रहा था। जिस सर्प ने उसे काटा था वो एक इच्छाधारी सर्प था, जिसका जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था। जल्दी ही वो उस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे एक भयानक घोर अंधेरे में पहुंच चुका था और अपने गुरु की समाधि देखकर वो उसके सामने ही अपने सिर के बल लेट चुका था। जहर उसके जिस्म में फैल चुका था। तब वो अपनी टूटी फूटी जुबान में बोला, गुरुजी, मेरी सहायता कीजिए। इतना कहते ही वो मूर्छित अवस्था में पहुंच चुका था। वो कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहा था, तभी जोरों से एक बड़ी भयानक रोशनी वहां फैलने लगी और उस तेज रोशनी की एक किरण उस काली शक्ति के मालिक के अंदर जाने लगी और केवल कुछ ही क्षणों में वो बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। अपने आप को सही सलामत देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता था गुरुजी, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। तब उसके गुरु बोले, बोलो, कैसे हुआ तुम्हारा यहाँ आना? तब वो मालिक बोला, गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, फिर सब कुछ जानकर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तब उसका गुरु, जो दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, बोला, मैंने तुझे बेहिसाब काली शक्तियाँ दी थीं और तूने किया क्या? तू अभी तक मुझे वो तिलिस्मी पत्थर लाकर नहीं दे सका। जब तक वो तिलिस्मी पत्थर हमें नहीं मिल जाता, तब तक हमारा जिस्म हमें वापस नहीं मिल सकता। तुझे एक काम दिया था, लेकिन तू अभी तक उस काम को नहीं कर पाया और तेरे मन में जो अमन और मान को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं, उसका जवाब तुझे खुद ही खोजना होगा। मैं सिर्फ तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ। और एक और बात, अगर तूने आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले पहले वो तिलिस्मी पत्थर हासिल नहीं किया तो तू फिर कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द उन सफ़ेद जिन्नों की शक्ति और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोई ऐसा उनके घर उनकी ज़िंदगी में आने वाला है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और इतना ही नहीं, अमन और मान का बच्चा भी इस दुनिया में जन्म जरूर लेगा। अगर तू रोक सकता है तो रोक ले, और याद रहे, एक बार उस बच्चे ने जन्म ले लिया किया तो 18 साल का होते ही उस बच्चे में इतनी शक्तियां होंगी कि वो तुझे, मुझे और जितनी भी काली ताकतें हैं उन सबको चुटकियों में मिटा सकता है। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो जाकर वो तिलिस्मी पत्थर मुझे लाकर दे, या फिर इंतजार करो अमन और मान के बच्चे का जो तेरी जान लेगा। तेरी मौत उसी के हाथों लिखी है, ये तय है। अपने गुरुजी के मुंह से ये सब सुनते ही उस मालिक का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वो अपने गुरुजी पर ही भड़क गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? कल का पैदा हुआ बच्चा मेरी काली दुनिया के बादशाह की जान ले लेगा? लगता है आप समाधि में बैठे बैठे सनकी हो गए हैं। आपको लगता होगा उन सफेद जिन्नों से डर, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। रही बात अमन और मान की, चाहे वो दो भाइयों की जगह 10 भाई आ जाएं, मैं उन्हें यूं ही चुटकियों में मसल दूंगा और उन लोगों से बहुत जल्द वो तिलिस्मी पत्थर छीन कर आपको दूंगा। आपको नहीं पता है मैं अमन के कितने करीब हूँ। आप देखना, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको वो तिलिस्मी पत्थर ही दूंगा। अब आप मुझे केवल इतना बताइए, अमन और मान का राज मुझे कौन बताएगा? तब उसके गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, जा बेटा जा, जिस इच्छाधारी नाग ने तुझे काटा है वही तुझे आगे का रास्ता बताएगा। तब वो मालिक अपने गुरुजी को प्रणाम करके वहां से जाने लगा। उस मालिक के जैसे ही पीछे मुड़ा, वही काला नाग जो नागिन के साथ था उसे बैठा हुआ घूर रहा था। एक पल को वो मालिक उसे इस तरह से बैठा देखकर ठिठक गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालता हुआ उस नाग के बिल्कुल ठीक सामने जा खड़ा हुआ। उसे देखकर वो नाग पलट गया और कहीं जाने लगा। वो मालिक भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वो देख रहा था जैसे जैसे वो नाग आगे बढ़ता जा रहा था, बाकी के सभी नाग उसके सामने अपना सिर झुका रहे थे। तब उस मालिक से रुका नहीं गया और वो उससे पूछ बैठा, ये सब क्या है? ये सब सांप आपको देखकर सिर क्यों झुका रहे हैं? तब उस नाग ने उसे पीछे पलट कर देखा और उसे घूर कर देखने के बाद बोला, क्योंकि मैं इन सबका राजा हूँ। ये बात सुनते ही उस मालिक की हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा।
वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा और सोचने लगा, ओ शिट, ये क्या हो गया? मैंने सांपों के राजा की ही रासलीला बंद कर दी थी। मन ही मन सोचता हुआ वो उसके साथ आगे बढ़ने लगा। वो सांप उस काली शक्ति के मालिक को जंगल में ले जाने लगा। धीरे धीरे वे लोग एक बड़ी ही भयानक सी जगह पर पहुंच चुके थे। वो कोई बरसों पुराना उजड़ा हुआ गाँव था, जहाँ अब गाँव के नाम पर केवल हड्डियों के ढांचे थे जिनमें बड़े बड़े कीड़े लगे हुए थे। उस जगह से काफी ज्यादा गंदगी आ रही थी, क्योंकि वहां हड्डियों और बदबूदार कीड़ों के अलावा और कोई नहीं था। तभी वो सांप आगे बढ़ता रहा और उस मालिक को एक घनी अंधेरी कोठरी में ले गया, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसकी दाढ़ी से पूरी कोठरी भरी हुई थी। वो एक ऊंचे से स्थान पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। उस मालिक को काफी हैरत हो रही थी उस अजीब से बूढ़े आदमी को देखकर। उसके जिस्म पर केवल नाम मात्र का ही गोश्त था, क्योंकि वो कभी खाना नहीं खाता था। वो सिर्फ और सिर्फ हवा और सूरज की किरणों का भोजन किया करता था। वो पिछले 100 बरसों से वहीं एक जगह विराजमान था। वो सर्प उस काली शक्तियों के मालिक को लेकर उसकी दाढ़ी से रास्ता बनाता हुआ उसके पास पहुंच गया था। उस तक पहुंचने के लिए उसकी दाढ़ी से रास्ता बनाना जरूरी था, क्योंकि पिछले 100 बरसों में पहली बार यहां कोई आया था। पूरा का पूरा गांव एक भयानक शमशान में बदल चुका था। केवल अगर वहां कोई जिंदा था तो केवल वो तपस्वी, जो हवा सूरज के सहारे जीवित थे।